और फिर आखिरी आयतों में एक हकीकत खोल दी कि जिसको सुन के होश गुम हो जाएं, और वो क्या है, इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम, बेशक हम यकीनन मर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिख रहे हैं उनके आमाल को जो उन्होंने आगे भेजे और जो पीछे छोड़े। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, और हर चीज को हमने एक रोशन किताब में घेर रखा है। ये कमेंट है पूरे रुकू पे, नहीं मानते ना माने, नहीं सुनते ना सुने, अपनी गफलतों में रहना चाहते हैं तो रहने दो, आपकी दावत को कबूल नहीं करते तो खुशी से ना करें। क्यों? एक दिन आएगा जब इनको दोबारा जिंदा किया जाएगा, मर के मिटेंगे फिर बनेंगे, ये दुनिया एक ही नहीं दोबारा बनेगी। इतना भी होता तो शायद काफी था, लेकिन वह नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम, हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा। आज जो इनकी जुबानें बोलती हैं वो लिखा जा रहा है, जो इनकी आंखें देखती हैं वो लिखा जा रहा है। आपको कोई ये कहे कि आपकी हर बात लिखी जा रही है तो आपको कैसा महसूस होता है? एक सवाल लिखें और इसका जवाब भी आप अभी लिखेंगे। अगर मुझे ये मालूम हो कि मेरी हर बात रिकॉर्ड हो रही है और जो मैं देखती हूं वो सब्त हो रहा है, तो आपका अमल कैसा होगा? जो मैं कर रही हूं वो एक जगह रिकॉर्ड हो रहा है, मूवी बन रही है आप इसको कह लें, और कल सबके सामने वो खुलेगी। अब 3 मिनट लें और इसके बारे में खुद लिखिए अपने नोट्स पे। असल में हमने कभी ऐसे तजुर्बे किए ही नहीं है, हमें तो गम एक ही लगे हुए हैं, बिल कहाँ से जमा होगा, किस्त आ रही है, बच्चों की फीस और सो ऑन। कभी ये सोचा ही नहीं कि वह नाक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम, आज जिस नक्शे में रंग भर रहे हैं कल उसको देखेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि वो दुनिया और है जिसमें हम जीते हैं, और वो दुनिया और है जिसमें रब हमें बसाना चाहता है। हम दुनिया में रहते हुए अपने नफ्स के धोखों में हैं, हमें वक्त ही नहीं मिलता कि हम अल्लाह के दीन के लिए कुछ कर सकें। हमें लगता है कि ये टू मच है, मैं इस किताब को सीखूं, मैं इसको पढूं, ये बहुत मुश्किल है, आज के दौर में इस किताब पे अमल नहीं हो सकता, ये किताब बस ऐसे ही है फारिक लोगों की बात। कभी आपको पढ़ते हुए ये महसूस हुआ कि ये किताब जो है ये बस कोई नाउज़ुबिल्ला कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ है, कोई पुरानी किताब है, ओल्ड माइंडेड लोग इसको देखें और इसको पढ़ें? क्यों? इसलिए कि हमने कभी इसको उस तरह से, हमने शायद शुरू से ही लिखे कि कुरान दीन किताब खटिया कागज़ के सफ़ों पे छप प्रिंट होता है, ये भी एक गफलत के दौर में हुआ। दीनी लिटरेचर किस स्टैंडर्ड का होता है? रद्दी जिस पे अखबार छपता है ना, उस सफ़े पे। फिर आप देखिए कि जो दीन सिखाने वाले होते हैं अमूमन, हमने उनका स्टैंडर्ड भी ऐसा ही देखा, जितना वो अपने आप को गंदा और बेकार रखें उतना ही फील होता है कि ये ज़्यादा जाहिद है। अल्लाह के नबी के दौर में ये तरीका नहीं था। दीन आपसे आपकी दुनिया नहीं लेता, दीन आपको कोई गैर मकबूल शख्स नहीं बनाता। कपड़ों से बू आए, आपके गाउन से इतनी स्मेल आए कि लोग आपके पास खड़े ना हो सकें, ये दीन नहीं है। इस वक्त मुझे लगता है कि जो आज के दौर का जिहाद है वो क्या है कि इस दीन की इज्जत लोगों को दिखाएं, इसका जमाल दिखाएं, इसका जलाल दिखाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब मलका सबा उनके पास आने लगी थी तो याद है आपको कि उन्होंने क्या किया था? कहा कि कोई है जो इसके तख्त को इसके मुल्क से उठा के इधर ले आए। आपको पता है उन्होंने ऐसा क्यों किया था? ताकि इस मलका को पता चल जाए कि एक मुस्लिम बादशाह और एक मुशरिक बादशाह में क्या फर्क है। इनके पास भी ताकत है, इनके पास भी ये सब चीजें मौजूद हैं। ये दीन कोई कमजोर नहीं है। आज के दौर में भी आप देखिए कि अमूमन दुनिया के नाते से जब हमारा मामला होता है तो वो कैसा होता है और दीन के नाते से कैसा होता है। अगर आप साथ ही अपनी चेकलिस्ट खोलें तो मैं चाहूंगी कि अब हम आज की कमिटमेंट्स को भी देखते हैं, और सफा नंबर 16 है आज की इसी वर्कबुक का, कुरान क्या है, सबसे ऊपर क्या है कि हम क्या करें। इसमें लिखी हुई बात क्या है कि कुरान मजीद सीखने के लिए मैं नफ्स के किसी धोखे में नहीं आऊंगी। है ना, ये नफ्स के धोखे कौन कौन से धोखे थे? तासुब का धोखा, अहम नहीं है, गफलत ठीक है, जहालत में रहना मंजूर है। फिर इसी तरह आप देखिए बाप दादा की तकलीद और उसकी मोहब्बत, और फिर कुछ मोहब्बतों की बात, तासुब की बात, फिर इसको सुन लिया तो अमल करना पड़ेगा। ये सारी नफ्स की बातें हैं ना, है ना? ये नफ्स की इन चीजों से इंशाल्लाह हमने निकलना है कि अल्लाह बस बहुत हो चुका, अब मुझे अपने आप को बदलना है। फिर अगली कमिटमेंट यहाँ लिखी हुई है कि मैंने वक्त निकालना है और अल्लाह से मदद की दरख्वास्त करनी है कि वो मुझे सुरखरू कर दे इंशाल्लाह। करते हैं ये कमिटमेंट, जरूरी नहीं कि आप ये सारी करें। अगर नहीं कर सकते तो इसको अपने नोट्स में से निकाल दें, कोई मजबूरी नहीं, कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं कि आए हैं तो अब करके ही जाना पड़ेगा। नहीं, आप कह दें नहीं मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे अभी इस किताब को नहीं सीखना, अभी मैं इसको वक्त नहीं दे सकती, अभी मेरे पास और बड़े काम हैं, अभी मेरे पास जिम्मेदारियां बहुत हैं, अभी मुझे पैसों की बड़ी जरूरत है। काट दें, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर नियत करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि अल्लाह ताला आपको कैसे देगा। इसी में कुछ चीजें और नोट कीजिए। तासुब को खत्म करना है, फिर इसी तरह आपने आज के सबक में जो सीखा वो क्या सीखा? अपनी बड़ाई के एहसास को ख़त्म करना है, इस किताब को हिकमत वाली किताब समझना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को पहचानना है, और यही किताब सिराते मुस्तकीम पर लेके जाएगी इसका यकीन करना है। इस किताब का नज़ूल अल्लाह की रहमत की दलील है, इस पे अपने दिल को मुतमईन करना है। उन लोगों तक पैगाम बुला पहुंचाना है जो गफलतों में पड़े हुए हैं, उन तक भी इस किताब को लेके जाना है जिनके माँ बाप भी गाफिल थे। इस वक्त हमारे सामने दो जनरेशन्स हैं, एक यंग्स की और एक एल्डर्स की, और आप देखें कि ये आयत बिल्कुल उन बच्चों पे फिट होती है कि जिनके माँ बाप को भी दीन की समझ नहीं है ना। एक होता है आप किसी की बच्ची को देखते हैं वो दुरुस्त लिबास नहीं पहनती, आप शॉक्ड होते हैं कि क्या मुसलमान ऐसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन साथ ही आपकी नजर पड़ती है उसकी माँ पे, उसने भी वैसे कपड़े पहने होते हैं, तो फिर आपका सदमा दुगना हो जाता है, इसको क्या हुआ, इसके तो पीछे ये बात नहीं थी। तो क्या है कि जिनके माँ बाप भी गाफिल हैं, क्योंकि वो फिर क्या हो जाते हैं, अंधेरों पे अंधेरे। एक नूरुन अला नूर होता है, एक जुल्म अला जुल्म होता है, अंधेरा होता है। तो लिहाजा ऐसा मामला है कि जिसके अंदर गफलतों में है। फिर एक और चीज जो इसमें कमिटमेंट की है वो क्या है कि अपने अंदर आजिज़ी पैदा करनी है, अपनी बड़ाई के एहसास को कम करना, और मोहब्बत और नफरत, किसी की मोहब्बत में या किसी की नफरत में दीन को नहीं छोड़ना, दीन के फायदे को नहीं छोड़ना। फिर उसके आगे बात जो हमने अपने अमल के लिए करनी है वो क्या है कि जिक्र की इत्तेबा करनी है, पैरवी करनी है। रहमान से बिन देखे डरना है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी तलब करनी है और इस शऊर के साथ जीना है कि मेरा हर हर बोला हुआ लफ्ज रिकॉर्ड हो रहा है और मैं अपने पीछे तो छोड़ के जाऊंगी वो भी महफूज हो रहा है। कोई इंसान अपने पीछे नहीं देख सकता कि क्या हो रहा है। इसी तरह आज हमारी जिंदगी में जो अमल की चीजें हैं उसके असरात हमारी नस्लें देखेंगी। मैंने अपने अंदर इस शऊर को बेदार करना है कि मेरी आने वाली नस्लें किस तरीके पे होंगी, मैं उनको कौन से तोहफे देके जा रही हूं। और इस शऊर के साथ जीना है कि सब अच्छा और बुरा कल कयामत के दिन मेरे हाथ में दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको पढ़ के सुनाओ। मेरा ख्याल है कि अगर ये सारी कमिटमेंट्स आपने अगले दिन, जब आपको कुछ दिन मिलेंगे बीच में, अगर हर दिन थोड़ी सी बातों पे भी गौर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप काफ़ी चीज़ों को कर सकते हैं। ये सिर्फ नोट्स नहीं है जो आपको मिल रहे हैं इस वक्त, ये आप लिख जो रहे हैं ना, ये क्या है, अज़्म है, इरादा है, क्योंकि ये खुद इख्तसाबी का सफ़र है। आपने अपने आप को बदलने की नीयत की है, आप एक नया इंसान अपने अंदर से निकालना चाहते हैं, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। जो लोग एक्टिविटीज़ से फ़ायदा नहीं उठाएंगे वो ज़्यादा कोर्स से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, ठीक है, जो भी उठा लें वो भी ठीक है, सिर्फ सुन लें, लेकिन जो सुन के मानेंगे ना वो आगे निकल जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद आगे आपके सामने जायज़ा लेने वाली, अपनी जायज़ा फॉर्म देख लीजिए, 16 नुकात हैं आज के, किस किस तरह से आपने जायज़ा लेना है। और जायज़ा लेना भी असल में फिर वही चीज़ है कि आपने अपने आप को डिस्कवर करना है। पहला पॉइंट क्या है कि क्या मेरे दिल को यकीन है कि कुरान मजीद हिकमत भरी किताब है। अपने दिल से जवाब लें इसका और फिर लिखेंगे। कुरान मजीद की कोई बात अकल के खिलाफ नहीं, क्योंकि आज मुसलमानों ही के जहन से ये बातें निकलती हैं ना कि ये कैसी बातें। कुरान मजीद काबिले अमल किताब है, ये कितने लोग मानते हैं। आज एक मशहूर जुमला क्या बोलते हैं जी आप, 1400 साल पुरानी किताब पढ़ रहे हो, कंप्यूटर का दौर है, साइंस का दौर है, तुम इसको सीखना चाह रहे हो, हाँ? तो अपने दिल को अंदर से सोचना है क्या आज के दौर में इस किताब पे अमल हो सकता है। फिर अगला नुक्ता देखिए, कुरान मजीद हर दौर के तकाजों के ऐन मुताबिक है, ओल्ड डेटेड नहीं है ये। कुरान मजीद गालिब और रहीम हस्ती का नाजिल करता है। कुरान मजीद इसलिए नाजिल किया गया कि गाफिल इंसानों को खबरदार किया जाए। हम क्या सोचते हैं, तिलावत के लिए, तावीज़ बनाने के लिए, शादियों में सर के ऊपर से गुजारने के लिए, हालांकि क्यों नाजिल हुआ, गाफिलों को उनकी गफलत से निकाला जाए। कुरान मजीद की दावत पर वो लोग ईमान नहीं लाते जो फैसला अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं। और ऐसे लोगों के लिए फिर आपने क्या करना है, दुआ करनी है। कुरान मजीद की रहनुमाई कबूल ना करने वाले जिद, हठधर्मी और तकबर में मुबतला है। कभी किसी को दीन की दावत देना तो इन तीन में से एक सबब होता है जिसकी वजह से वो उस दावत को कबूल नहीं करता। قرآن مجید کی رہنمائی قبول نہ کرنے والے پچھلی تاریخ سے سبق نہیں لیتے، قرآن مجید کی رہنمائی قبول نہ کرنے والے مستقبل کے نتائج پر غور نہیں کرتے، تبھی تو ماں قدم و آثارہم وکل شئین اقصیناہ فی امام مبین، اس شعور کے بغیر جیتے ہیں نا کہ کل یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا. کبھی واقعی اب دیکھیں کہ کوئی کام کرتے وقت سوچا کہ مستقبل میں اس کا اثر کیا نکلے گا؟ ہم تو فن کے لیے جیتے ہیں، آج کے لیے جی لو، جو آج ہے بس وہ کر لو. تو اس غور سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. پھر اگلا نقطہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی رہنمائی قبول نہ کرنے والوں کے لیے یکساں ہیں کہ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، یہ نہ مانیں گے. قرآن مجید کی دعوت وہی قبول کر سکتا ہے جو بن دیکھے خدا رحمان سے ڈرے اور جو نصیحت کی پیروی کرے. اس چیز کا یقین ہے؟ قرآن مجید کی دعوت قبول کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت ہے، کیونکہ جب اس بات کا یقین ہو جاتا ہے نا تو پھر اس دعوت کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. کون ہے جو یہ نہ چاہے کہ میرے گناہ معاف ہوں؟ ہے کوئی؟ اور کون ہے جو اللہ سے بڑے بڑے اجر نہ چاہے؟ تو یہ یقین دل کو جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اس کتاب کی طلب بڑھتی جائے گی. پھر اگلا نقطہ ہے، دنیا میں میرے کیے ہوئے ہر کام کو اللہ نے لکھ رکھا ہے. یقین ہے؟ عملی یقین دیکھنا ہے ہم سب نے. میں نے اپنی زندگی کے ہر عمل کا اللہ کو حساب دینا ہے. سب سے مشکل بات ہے یہ. کسی کو ایک مہینے کا حساب نہیں آپ دے سکتے. کوئی آپ سے کہہ دے کہ ایک مہینے میں جو آپ کو پیسے دیے خرچ کے اس کا حساب لکھ دیں، کیا حالت ہوتی ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ حساب کا پرچہ میں نے دیکھا کہ دنیا میں بھی بڑا مشکل لگتا ہے لوگوں کو، اور کہاں پھر دنیا بھر کی چیزوں کا حساب وہاں دینا پڑے. اور پھر آخری عمل کیا ہے آج کی جائزہ فارم کا؟ قرآن مجید کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا کر ہی اللہ کے ہاں سرخ رو ہو سکتی ہوں. اس کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانا ہے. تو یہ تھا آج کا جائزہ فارم. اب آخر میں ایک چھوٹے سے نقطے پہ آپ کے لیے ایک چیز شیئر کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ من خشی جا رحمان، جو پیچھے ہم نے دیکھا تھا. یہاں آیت نمبر 11 کو دیکھیے. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اس کتاب سے فائدہ ہو. دو شرائط اس میں دی، من اتبع الذکر، یہ تو اب ہم نے کر لیا اپنے اس جائزہ فارم میں، ہم کیا کریں کمٹمنٹ میں. لیکن وخشی جا رحمان بالغیب، یہ کیا ہے؟ اس پہ عمل کیسے کریں؟ تو اس کے بارے میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ. اور وہ کیا ہے کہ دنیا میں جب ہم آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے. ایک بندہ مومن ساری زندگی اس خواہش میں رہتا ہے کہ وہ رب کو دیکھے، رب کو پائے. دنیا میں یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ اس خواہش کو پورا کرے گا. میٹنگ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. آج اللہ تعالیٰ چھپا ہوا نا اپنے پردوں میں، کل جب سب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں ان لوگوں سے کلام کرے گا. اب دیکھیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پردوں میں رکھا ہوا ہے نا. اگر ہمیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو ہمارے دل میں اتنی ہی تڑپ ہونی چاہیے اس سے ملاقات کی. اور میں تو یہی سوچ رہی ہوں کہ وہ دن کتنا ہماری زندگی کا خوش قسمت ترین دن ہوگا کہ ہم اس محفل میں بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا کے اس کے گناہ دکھائے گا، یہ کیا تھا یہ کیا تھا. وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو نے تجھے معاف کر دیے تھے، کیا تو نے ہمیں معاف نہیں کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں معاف کیے، تبھی تو تم یہاں پہنچے ہو. یعنی اتنا خوبصورت منظر ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. شرط یہ ہے، آج رب کو بن دیکھے ڈر جائیں گے، کل اس کا دیدار کریں گے. اور کیا وہ من ہوگا کہ جب رب سے ملاقات ہوگی. ہم سب کو اپنا حساب لینا ہے، کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھے اس محفل میں بلایا جائے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی مغفرت کو اہل ہوں؟ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اپنا حساب لینا آسان کر دے، اور دوسروں سے بے نیاز کر کے ہم سب کو ہماری اصلاح کی فکر لگا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.